एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम अमेरिकी साहित्य की एक बहुत ही अहम और बेहद खूबसूरत कृति पर बात करने जा रहे हैं, ज़ोरा नील हस्टन का 1937 में प्रकाशित उपन्यास देयर आईज वर वॉचिंग गॉड।
हाँ, ये महज एक उपन्यास नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि एक औरत की आत्मखोज की एक काव्यात्मक यात्रा है।
बिल्कुल, और ज़ोरा नील हस्टन खुद भी मतलब एक असाधारण शख्सियत थी।
जी, हालम रेनेसां के दौर की एक चमकती हुई सितारा। वो सिर्फ लेखिका ही नहीं, बल्कि एक प्रशिक्षित मानव विज्ञानी और लोक कथाकार भी थीं। उनकी नज़र जो थी, वो अश्वेत संस्कृति की आत्मा को पकड़ती थी।
हाँ, और यही बात उन्हें खास बनाती है, है ना? जहाँ उस दौर के कई अश्वेत लेखक वो नस्लीय उत्पीड़न और संघर्ष पर लिख रहे थे, हॉस्टन ने दक्षिणी ग्रामीण अश्वेत जीवन की भाषा, उसकी रवानगी, उसकी लोक कथाओं और उसकी जीवंतता का जश्न मनाया। ये उपन्यास फ्लोरिडा के पूरी तरह अश्वेत शहर ईटनविल और एवग्लेट्स के खेतों की पृष्ठभूमि में रचा गया है।
और दिलचस्प बात ये भी है कि जब ये किताब छपी तो इसकी प्रतिक्रिया मिली जुली सी थी।
हाँ, रिचर्ड राइट जैसे बड़े लेखक ने तो आलोचना की थी।
बिल्कुल, कहा कि ये अश्वेत लोगों के संघर्ष को गंभीरता से नहीं लेती और भाषा को भी मतलब देहाती कहकर खारिज किया।
लेकिन देखिए, समय ने हस्टन के नजरिए को सही साबित किया।
सही कहा, 1970s के दशक में एलिस वॉकर जैसी लेखिकाओं ने इसे फिर से दुनिया के सामने रखा और आज तो ये अफ्रीकी अमेरिकी साहित्य और नारीवादी साहित्य दोनों में एक मील का पत्थर मानी जाती है।
तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि जैनी क्रॉफर्ड की जिंदगी के उतार चढ़ाव, उसके रिश्तों के आईनों में जो उसके अक्स दिखते हैं, और सबसे बढ़कर अपनी आवाज पाने का जो उसका सफर है, उसको गहराई से समझे।
तो कहानी की शुरुआत ही देखिए कितनी नाटकीय है। 40 के आसपास की जैनी क्रॉफर्ड सालों बाद अपने गृह नगर ईटनविल लौटती है।
हाँ, शाम का वक्त है और कस्बे के लोग अपने पोर्च पर बैठे उसे देख रहे हैं और कानाफूसी कर रहे हैं।
एकदम, वो मर्दों वाले काम करने के चौगे पहने हैं, बाल खुले हैं, अकेली है, पर उसके चेहरे पर थकान के साथ एक अजीब सी शांति और आत्मविश्वास भी है।
और लोग फुसफुसा रहे हैं, अरे उसका वो जवान पति टी केक कहाँ गया उसके साथ? इतनी सजधज के गई थी और अब ये हाल।
लेकिन जैनी वो उनकी परवाह नहीं करती। वो सीधे अपनी सबसे अच्छी दोस्त फीबी वॉटसन के घर जाती है
और यहीं से कहानी का फ्रेम खुलता है ना?
हाँ, पूरी रात जैनी फीबी को अपनी जिंदगी की कहानी सुनाती है। ये उपन्यास असल में जैनी की आपबीती है, जिसे वो अपनी दोस्त के साथ साझा कर रही है। और इस कहानी का जो मूल सवाल है वो क्या है? वो है जैनी का खुद को गढ़ने का संघर्ष।
सही।
दूसरों की उम्मीदों, समाज के बंधनों से आजाद होकर अपनी शर्तों पर प्यार और जिंदगी जीने की चाह।
तो कहानी हमें जैनी के बचपन में ले जाती है। वो अपनी नानी के साथ रहती हैं, जिन्होंने गुलामी का दौर देखा है।
हाँ।
नानी जैनी से बहुत प्यार करती हैं, पर उनका प्यार जो है वो डर से सना हुआ है। वो मानती हैं कि अश्वेत औरत की जिंदगी बहुत कठिन है, उसे दुनिया का बोझ ढोना पड़ता है।
उनका वो मशहूर कथन है ना, द नीगो वुमन इज द म्यूल और द वर्ल्ड।
हाँ,
उनके लिए सुरक्षा और सम्मान सबसे जरूरी है, खासकर आर्थिक सुरक्षा।
और यहीं पर वो पीढ़ी का सोच का टकराव दिखता है, है ना? नानी का डर अपनी जगह जायज है, उनके अनुभव कड़वे हैं।
बिल्कुल,
लेकिन उनकी जो सुरक्षा की परिभाषा है वो जैनी के सपनों से मिल नहीं खाती। 16 साल की जैनी को प्यार की एक अलग ही तस्वीर दिखती है, अपने घर के पिछवाड़े में नाशपाती के पेड़ के नीचे।
सूरत है, वो देखती है कैसे मधुमक्खियां फूलों से मिलती हैं, एक सहज बराबरी का रिश्ता।
और ये दृश्य उसके लिए सच्चे पारस्परिक प्रेम का प्रतीक बन जाता है, एक सपना जिसे वो जिंदगी भर खोजेगी।
लेकिन नानी इस सपने को वो देख नहीं पाती। वो जैनी को एक अधेड़ उम्र के किसान लोगन किलिक्स के साथ शादी करने को मजबूर करती हैं।
क्योंकि उसके पास 60 एकड़ जमीन है, वो सुरक्षा दे सकता है।
जी, और ये जैनी की जिंदगी का पहला पिंजरा साबित होता है। लोगन शायद बुरा आदमी नहीं है, पर रूखा है, उसमें कोई जुनून नहीं, कोई बराबरी का एहसास नहीं। वो जैनी को अपनी संपत्ति समझता है।
बिल्कुल, और जल्दी ही वो सुरक्षा जो है वो शोषण में बदलने लगती है।
हाँ, लोगन जैनी से घर के काम के साथ साथ खेत में भी मेहनत की उम्मीद करने लगता है। वो उसे एक और खच्चर खरीदने की बात करता है, मानो जैनी भी खेत का एक औजार हो।
और ये जैनी के लिए असहनीय हो जाता है। वो समझ जाती है कि ये वो जिंदगी नहीं है जिसका उसने सपना देखा था।
और ठीक इसी मोड़ पर उसकी जिंदगी में आता है जो स्टार्क्स, जिसे सब जोड़ी कहते हैं।
जोड़ी जवान है, बातें करने में माहिर, बड़े सपने देखने वाला।
हाँ, वो जेनी को लोगन के जिंदगी से निकालकर एक नई दुनिया का वादा करता है। वो उसे ईटनविल ले जाने की बात करता है, जो एक नया उभरता हुआ अश्वेत शहर है।
जेनी के लिए ये एक मौका है। शायद वो नाशपाती के पेड़ वाला सपना तो नहीं, पर कम से कम लोगन के पिंजरे से आजादी का रास्ता जरूर है।
सही। और ये जेनी का पहला सक्रिय फैसला है, कह सकते हैं। वो लोगन को छोड़कर जोड़ी के साथ भाग जाती है।
हाँ, यहाँ हमें जेनी की वो जो निष्क्रियता थी वो टूटती हुई दिखती है।
तो वो ईटनविल पहुंचते हैं और जोड़ी अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करता है। जमीन खरीदता है, दुकान खोलता है, पोस्ट मास्टर बनता है और जल्द ही शहर का मेयर बन जाता है।
और जेनी बन जाती है मिसेज मेयर स्टार्क्स।
बाहर से देखने पर तो लगता है कि जेनी ने कितनी तरक्की कर ली, एक बड़े घर की मालकिन, मेयर की पत्नी।
लेकिन ये तरक्की एक और ज्यादा सुनहरा पिंजरा साबित होती है। बिल्कुल, जोड़ी सत्ता और रुतबे का भूखा है। वो जेनी को एक खूबसूरत ट्रॉफी की तरह देखता है।
हाँ, जिसे दुनिया को दिखाया जा सके लेकिन जिसकी अपनी कोई आवाज न हो। वो उसे दुकान पर काम तो करने देता है, पर आम लोगों से घुलने मिलने से रोकता है।
कहता है, तुम इन सबसे बेहतर हो।
और सबसे प्रतीकात्मक है उसका जेनी के बालों को लेकर रवैया। जेनी के बाल बहुत लंबे और खूबसूरत है, जो उसकी पहचान और शक्ति का प्रतीक है। जोड़ी उसे मजबूर करता है कि वो अपने बाल हमेशा बांध कर रखे, खासकर दुकान पर। ये असल में जेनी की आत्मा को, उसकी आजादी को बांधने की कोशिश है। वो धीरे धीरे जेनी की आवाज को दबा देता है।
20 साल, सोचिए 20 साल जेनी ये सुनहरे पिंजरे में घुटन महसूस करती है। वो चुपचाप सब सहती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका वो नाशपाती के पेड़ वाला सपना मुरझा रहा है।
इस रिश्ते में प्यार नहीं, सिर्फ नियंत्रण और दिखावा है। और जोड़ी का बढ़ता अहंकार और जेनी की चुप्पी के बीच तनाव बढ़ता जाता है।
फिर एक दिन ये चुप्पी टूटती है।
हाँ, दुकान पर तंबाकू काटने में जेनी से कोई छोटी सी गलती हो जाती है और जोड़ी सबके सामने उसका मजाक उड़ाता है, उसे बूढ़ी कहता है।
और इस बार जेनी पलटवार करती है।
जी, वो भी भरी दुकान में जोड़ी के ढलते शरीर और मर्दानगी पर ऐसी चुभती हुई टिप्पणी करती है कि वो शर्मिंदा हो जाता है।
ये जेनी का अपनी आवाज को फिर से पाना है, भले ही कड़वाहट के साथ ही सही।
और ये घटना उनके रिश्ते में आखिरी कील साबित होती है। जोड़ी इसे कभी भूल नहीं पाता, उसका स्वास्थ्य गिरने लगता है।
जब वो मृत्यु शैया पर होता है, जेनी उससे एकांत में बात करती है। वो 20 सालों का दबा हुआ सच, अपनी घुटन, अपनी निराशा सब कह डालती है।
हाँ, ये एक दर्दनाक लेकिन जरूरी टकराव होता है।
जोड़ी की मौत के बाद जेनी 40 की उम्र में पहली बार आजाद महसूस करती है, एक अमीर विधवा।
तो अपने बंधे बालों को खोल देती है, आईने में खुद को देखती है और सालों बाद अपनी जिंदगी की मालिक बनती है। ये उसकी जिंदगी का दूसरा बड़ा मोड़ है।
वो इसी आजादी के माहौल में उसकी जिंदगी में एक ताजी हवा के झोंके की तरह आता है वॉजिबल वुड्स, जिसे सब टी केक कहते हैं।
टी केक। वो जेनी से लगभग 12 साल छोटा है, बेफिक्र, हसमुख और जिंदगी से भरपूर।
कोई रुतबे या पैसे वाला आदमी नहीं, एक साधारण मजदूर जो गिटार बजाता है, जुआ खेलता है और हर पल को जीना जानता है।
और टी केक जेनी को वैसे देखता है जैसे उसे पहले किसी ने नहीं देखा था, एक इंसान की तरह, एक बराबर की साथी की तरह। वो उसे चेकर्स खेलना सिखाता है, रात में झील किनारे मछली पकड़ना सिखाता है, उसे हंसाता है, उसे अपनी राय देने के लिए उकसाता है।
और जेनी को लगता है जैसे उसका वो नाशपाती के पेड़ वाला सपना वो सच हो रहा है।
हाँ, उसमें फिर से जीने की उमंग जाग उठती है।
लेकिन ईटनविल का समाज उसे ये रिश्ता स्वीकार नहीं?
बिल्कुल नहीं। एक सम्मानित विधवा का अपने से इतने छोटे गरीब लड़के के साथ घूमना उन्हें गवारा नहीं। लोग बातें बनाते हैं, जेनी को आगाह करते हैं।
लेकिन जेनी इस बार समाज की नहीं, अपने दिल की सुनती है।
वो टी केक से शादी करती है, अपनी सारी संपत्ति बेचकर उसके साथ एवरग्लेड्स यानी दम्मक चली जाती है।
दम्मक, फ्लोरिडा के वो इलाके जहां प्रवासी मजदूर खेतों में काम करने आते हैं।
हाँ, ये ईटनविल की सजी सजाई दुनिया से बिल्कुल अलग, एक कच्ची मिट्टी से जुड़ी जीवंत जगह है।
और यहाँ जेनी को एक नए तरह का समुदाय मिलता है। यहाँ दिखावा नहीं है, ऊंच नीच का भाव कम है।
जी, लोग साथ काम करते हैं, रात में साथ गाते बजाते हैं, कहानियां कहते हैं। जेनी पहली बार किसी समुदाय का सक्रिय हिस्सा बनती है।
खेतों में काम करती है, लोगों से घुलती मिलती है, उसे यहाँ वो बराबरी मिलती है जो उसे ईटनविल में कभी नहीं मिली।
टी केक के साथ उसका रिश्ता जुनून से भरा है, लेकिन वो आसान नहीं है।
हाँ, उसमें भी अपनी चुनौतियां हैं।
बिल्कुल, टी केक में बचपना है, वो कभी कभार जुआ खेलता है, एक बार जेनी के छिपा कर रखे पैसे चुरा लेता है, यहाँ तक कि एक बार जलन के मारे वो जेनी पर हाथ भी उठा देता है।
जेनी आहत होती है, लेकिन वो इन मुश्किलों का सामना करती है।
हाँ,
उनका प्यार गहरा है, पर उसमें असल जिंदगी की जटिलताएं भी हैं।
सही कहा।
हस्टन यहाँ कोई आदर्शवादी प्रेम कहानी नहीं दिखा रही हैं।
हाँ, वो दिखा रही हैं कि बराबरी के रिश्ते में भी मुश्किलें आ सकती हैं, खासकर उस समाज में जहाँ लैंगिक भूमिकाएं इतनी सख्त हों।
टीके का व्यवहार उस समय की मर्दानगी की धारणाओं से प्रभावित है, लेकिन फिर भी उनके रिश्ते का जो मूल तत्व है वो आपसी सम्मान और साझा जीवन है, जो जेनी के लिए नया था।
उनकी जिंदगी दमक पर चल रही होती है जब प्रकृति अपना भयानक रूप दिखाती है।
हाँ, एवरग्लेड्स में एक जबरदस्त तूफान आता है, बाढ़, तेज हवाएं सब कुछ तबाह कर देती हैं।
लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं और इस हाहाकार में उन्हें सिर्फ ईश्वर का ही आसरा दिखता है।
शायद यही उपन्यास का शीर्षक सार्थक होता है, देयर आइज वर वॉचिंग गॉड।
इस प्रलय से बचकर भागते हुए जेनी पानी में बहने लगती है। उसे बचाने के लिए टीके पानी में कूदता है और इसी दौरान एक पागल कुत्ता उस पर हमला कर देता है। केक चैनी को तो बचा लेता है, पर कुत्ते को मारते हुए वो खुद उसके दांतों का शिकार बन जाता है।
कुछ हफ्ते सब ठीक लगता है, पर फिर
केक में रेबीज के लक्षण दिखने शुरू होते हैं। वो बीमार, भ्रमित और हिंसक होने लगता है।
उसका प्यार गहरे शक में बदल जाता है। उसे लगता है जेनी उसे धोखा दे रही है। ये देखना जेनी के लिए कितना दर्दनाक रहा होगा।
बहुत ज्यादा। ये कहानी का सबसे दुखद और दिल दहला देने वाला मोड़ है।
एक दिन पागलपन के दौरे में टीके एक पिस्तौल लेकर जेनी पर हमला कर देता है
और जेनी के पास आत्मरक्षा में राइफल उठाने के अलावा कोई चारा नहीं बचता।
वो गोली चलाती है और टीके एक उसी के हाथों मारा जाता है।
जिस प्यार को उसने इतनी शिद्दत से पाया था, उसे अपने ही हाथों खो देती है। कितनी बड़ी त्रासदी है।
हाँ, और फिर जेनी पर हत्या का मुकदमा चलता है।
द मक का अश्वेत समुदाय, जो टीके को बहुत चाहता था, जेनी के खिलाफ हो जाता है। उन्हें लगता है जेनी ने जानबूझकर उसे मारा है।
अदालत में जेनी पहली बार अपनी पूरी कहानी सुनाती है, नानी से लेकर लॉगिन, जोड़ी और टीके तक।
वो अपनी आवाज का इस्तेमाल करती है, अपना सच बयान करती है।
और उसकी आवाज उसकी कहानी में इतनी सच्चाई और दर्द होता है कि पूरी तरह से श्वेत जूरी उसे बरी कर देती है।
ये भी एक विडंबना ही है कि श्वेत समाज उसे समझ पाता है जबकि उसका अपना समुदाय उसे गलत समझता है।
जेनी टी केक का एक शानदार अंतिम संस्कार करती है और फिर अकेली ईटनविल लौट आती है।
और यही कहानी का फ्रेम पूरा होता है। वो वापस फीबी के पोर्च पर है, अपनी कहानी खत्म कर चुकी है।
और वो अब वो डरी हुई चुपचाप सहने वाली लड़की नहीं है।
बिल्कुल नहीं। उसने प्यार पाया और खोया, उसने घुटन झेली और आजादी पाई, उसने अपनी आवाज खोई और फिर उसे हासिल किया। वो अब एक संपूर्ण स्त्री है।
तो अगर हम इस पूरी यात्रा को देखें तो कई गहरे सूत्रों भर कर आते हैं, है ना?
हाँ बिल्कुल। सबसे बड़ा सूत्र तो शायद अपनी आवाज खोजने का ही है।
जोड़ी का दमन, ये सब उसकी आवाज को दबाते हैं।
और टीके उसे बोलने का हौसला देता है और अंत में अदालत में उसकी आवाज ही उसे बचाती है।
और दूसरा बड़ा सूत्र है वो सच्चे प्यार की तलाश।
हाँ, वो नाशपाती के पेड़ का सपना, वो जेनी को रास्ता दिखाता है। वो सीखती है कि प्यार सिर्फ सुरक्षा या रुतबे का नाम नहीं है।
सच्चा प्यार बराबरी, साझेदारी और एक दूसरे को खुलकर जीने देने में है, जैसा उसे टीके के साथ मिला, चाहे वो कितना ही अपूर्ण और त्रासद क्यों न रहा हो।
हाँ, ये बताता है कि पूर्णता शायद अनुभवों को अपनाने में है, न कि किसी आदर्श स्थिति में।
अस्टन बड़े खूबसूरती से ये भी दिखाती हैं कि ये व्यक्तिगत यात्राएं सामाजिक ताने बाने से कैसे जुड़ी हैं।
जी,
नस्ल, लिंग और वर्ग, ये तीनों जेनी की जिंदगी को आकार देते हैं।
जी, एक अश्वेत महिला के तौर पर उसके अनुभव श्वेत महिलाओं से अलग हैं। फिर अश्वेत समुदाय के भीतर भी वर्ग भेद है, रंग भेद है।
हाँ, जैसे मिसेस टोनर का किरदार जो हल्के रंग की चमड़ी को तरजीह देती है। ये उपन्यास इन जटिलताओं को बड़ी बारीकी से पकड़ता है।
और प्रकृति का रोल भी बहुत अहम है।
बिल्कुल। नाशपाती का पेड़, दमोह की उन्मुख जिंदगी, वो विनाशकारी तूफान। प्रकृति एक तरफ जहां जेनी के सपनों और जुनून का स्रोत है, वहीं वो एक ऐसी शक्ति भी है जिसके सामने इंसान बेबस है।
हाँ, वो सभ्यता के बनाए नियमों और बंधनों के विपरीत खड़ी दिखती है।
और हस्टन की भाषा और शैली, वो भी इस उपन्यास को खास बनाते हैं। उन्होंने औपचारिक काव्यात्मक वर्णन के साथ दक्षिणी अश्वेत बोली का इतना जीवंत और प्रामाणिक इस्तेमाल किया है
कि पात्र सचमुच बोलते हुए महसूस होते हैं।
हाँ, ये उस समय के लिए क्रांतिकारी था। इसने लोक भाषा को साहित्यिक गरिमा दी और वो फ्रेम नैरेटिव और तीसरा पुरुष सीमित दृष्टिकोण जो हमें जेनी के मन में झांकने देता है
वो कहानी को और प्रभावी बनाते हैं।
और प्रतीक भी कितने गहरे हैं, नाशपाती का पेड़, जेनी के बाल, क्षितिज, तूफान। पाठक जेनी के साथ हंसता है, रोता है, उसकी घुटन और उसकी आज़ादी को महसूस करता है। टी केक की मात का दृश्य तो मतलब मन पर एक भारी बोझ छोड़ जाता है।
वाकई
अंततः ये उपन्यास हमें सिखाता है कि अपनी पहचान बनाना, अपनी शर्तों पर जीना और अपनी कहानी का मालिक बनना कितना जरूरी है, भले ही रास्ता मुश्किलों भरा हो।
हाँ, ये सफलता की पारंपरिक परिभाषाओं को चुनौती देता है और आंतरिक संतुष्टि और आत्मज्ञान को महत्व देता है।
ये दिखाता है कि जीवन की सार्थकता शायद तूफानों से बच निकलने में नहीं, बल्कि तूफानों का सामना करने और उनसे सीखकर आगे बढ़ने में है।
सही कहा, अपनी कहानी को जी लेना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है।
जेनी ने अपनी कहानी कहकर खुद को पाया और शायद दूसरों को भी रास्ता दिखाया। यह सोचने वाली बात है कि क्या आज के दौर में भी अपनी सच्ची कहानी कहना, अपने अनुभव को बिना लाग लपेट के आवाज देना उतना ही मुश्किल और जरूरी है।
बिल्कुल, ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।